देखते हैं हम कि आज के लेसन में अल्लाह ताला ने हमें क्या समझाया, क्या बताया है। अल्लाह ताला जो भी हमें बताता है इसमें हमारी खैर ख्वाही होती है, हमें कुछ सिखाना होता है, कुछ बताना होता है, हमारी कुछ इसलाह करनी होती है। और ये सिर्फ उस जमाने के लोगों के लिए नहीं, रहती दुनिया तक लोगों को इन्हीं आयात से अपने लिए रहनुमाई मिलती रहेगी, अपने लिए सबक मिलते रहेंगे। यही इस कुरान का मोजज़ा है कि हम सिर्फ ये ना सोचेंगे ओहद वालों के लिए उनके साथ ये हुआ था चलो जी आप पढ़ के हम आगे चलें। नहीं, ये हर शिकस्त खुर्दा के लिए, हर उसके लिए जिसको जख्म लगे, हर उस इंसान के लिए जो एक परेशानी से गम से गुजरे। क्यों गम आते हैं हमारे पर, क्यों आ जाते हैं गम? हम तो मुसलमान हैं, हम तो अल्लाह का नाम लेते हैं, हम तो ये करते हैं, हम नमाजें पढ़ते हैं, हम फलां कर, हमारे पर क्यों आ रहे हैं? वो उनके जवाब है यहाँ पे, और वो तसल्लियां हैं यहाँ पे जो कोई भी आपको नहीं दे सकता। जब हालात खराब हों इंसान के लिए जिंदगी में, और ऐसा होता रहता है, जिंदगी है ना ये, इसमें अप्स एंड डाउन्स हैं, कई दिन अच्छे हैं, कई दिन ऐसे हैं कि बिल्कुल डाउन दिन है, फिर उनमें बोलना क्या है, कैसी बातें मुंह से नहीं निकालनी। हमने ये पिछली दफा देखा था ना, कौन से कलिमात हैं जो हमने नहीं बोलने, वो आज हम देखेंगे कौन से कलिमात हैं जो बोलने हैं। ठीक है, अब कुछ तो पता चल गया, ये नहीं किया ना, हाय हमारे पास होते तो ना जाते, हाय ऐसे हो जाता तो ऐसे होता, अगर ये होता तो वो, अगर वो होता। और आपको मैंने बताया था एक कलिमा जो हमें सुन्नत से पता चलता है कि आपने उसको याद करना है, आपने याद किया, कादर अल्लाहु मा शाए अफ़अल, ये आपको याद करना है। और सिर्फ याद नहीं करना, कहना भी याद रखना है, ठीक है, दूसरों को भी याद कराना। फिर हमने देखा नरमी में कितनी खैर है ना, अगर ये रहमत ना होती, अगर सख्ती अच्छी चीज होती तो अल्लाह अपने नबी को सख्ती देता, लेकिन नरमी अच्छी चीज है तो अल्लाह ने अपने नबी को नरमी अता फरमाई। फिर हम देखते हैं कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से लोग भाग जाते, अगर आप सख्त होते तो हमारे जैसे लोगों के पास तो अव्वली तौर पे भाग जाएंगे, अगर हमने सख्तियां शुरू की तो। और हमने मशवरे की अहमियत भी देखी, बहुत सारे प्यारे सबक हमें मिलते हैं, अल्लाह पे तवक्कुल की बात देखी, हमने गिल को देखा, खयानत क्या होती है, साथ साथ अल्लाह ताला देखिए कैसी ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, ये खयानत नहीं करनी है, खयानत करके कोई लड़ते हुए भी जंग के मैदान में भी दुनिया से चला गया तो वो भी इस खयानत की भी चीज को लेकर आएगा। फिर हमने रिसालत के मकासद देखे, और अगर रसूल आए इस मकसद के लिए थे तो फिर हमने अगर उनमें से कोई भी काम नहीं किया, उनकी किसी भी उस चीज से फायदा नहीं उठाया जो उन्होंने सिखाई है, जिन चीजों के लिए अल्लाह ने उनको भेजा दुनिया में, तो फिर उनकी रिसालत से हमने क्या हिस्सा लिया? वो तो किताब की तालीम देने आए थे, है ना, किताब कोई सिखाने आए थे, किताब कोई पढ़ाने आए थे। और एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ, लिखनी या तो लिख लें इस बात को, अल्लाह ताला ने इस कलाम को ना कौलुन सकीला कहा है, कौल सकील, अभी सकील का मतलब मैंने आपको बताया भारी है, बड़ा भारी बात है ये। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी जब वही उतरती थी तो ऐसे लगता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान निकल जाएगी, जैसे इतना प्रेशर होता था इस वही का। तो ये हमारे तक तो बगैर ही किसी उसके पहुंच गई, कोई हमें ऐसा प्रेशर नहीं उठाना पड़ा, मगर हाँ इसको सीखना, इसको समझना, उसमें जो एफर्ट लगती है वो है, और उसको भी हम ना बर्दाश्त करना चाहे तो ये तो फिर बड़ी बदकिस्मती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी अपनी यानी जान हलकान करके इसको अपने ऊपर लिया था। तो ये है कौले सकील, ठीक है। और कयामत का दिन क्या है? ये वो भी योमे सकील है, वो भी भारी दिन, बड़ा सख्त मुश्किल दिन। तो एक बड़ी प्यारी बात उलमा कहते हैं जो कौले सकील है ना वो ही योमे सकील में बचाएगा, ठीक है। उस भारी दिन के लिए ये भारी कलाम ही है जो काम आ सकेगा और उस दिन बचा सकेगा। तो देख लें, रसूल आए किताब की तिलावत के लिए, इसकी तालीम के लिए, इसके जरिए तज़किया करने के लिए, और हम इसी किताब से ही दूर अगर हो गए तो, हमने इसी किताब को ना सीखा तो, इसी को ना समझ पाए सारी जिंदगी, तो क्या हिस्सा हमने लिया रसूल की रिसालत से? क्या वो तो ये फायदा देने के लिए हमें आए थे, हमने वो फायदा ही ना लिया। फिर कितनी प्यारी अल्लाह ताला ने तसल्लियां भी दी हैं, फिक्र ना करो, अगर तुम्हें कोई मुश्किल पहुंची उनको भी तो पहुंची है। और मौत से भागने का फायदा नहीं, जहां पे भी होगे वहां आके वो तुम्हें पकड़ लेगी। ठीक है, बड़े खूबसूरत सबक हैं। मैं कहती हूँ कि एक एक आयत जो है ना, आप लोगों को शायद लगता होगा ये इतना टाइम लगा देती है एक आयत पे, ये मैं क्या करूं, ये आयतों का हक नहीं अदा हो पाता। अगर हम एक सबक में एक आयत भी ले लें ना, तो वो भी कम है, वो भी कम है। ये इतना ज्यादा इसकी तफसीर हो सकती है, इतनी किताबें मुफस्सिरीन ने, जितनी मैं तफसीरें उठाती हूँ हर तरह से कैसे कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है, वो अब आप तक पहुंचाने के लिए माजरत है कि टाइम ज्यादा लग जाता है। बाज आयतें मैं कोशिश करती हूँ मैं जल्दी उससे गुजर जाऊं, क्योंकि हर आयत पे हम बहुत टाइम नहीं दे सकते, लेकिन हर आयत ही मोती है, हर आयत ही इतनी खूबसूरत है, हीरे जवाहरात है ये, इनके ऊपर कभी इस तरह से दिल को मलाल ना किया करें कि इतना लंबा, इतना इस आयत की तो तफसीर इतनी लंबी कर दी इन्होंने। अब वो उसका तकाजा ही ऐसा होता है, फिर मैं गुजर तो सकती हूँ आराम से, जल्दी से गुजर जाऊं, लेकिन बात नहीं बनेगी, फिर हक नहीं अदा हो पाएगा, वो हक तो अभी भी अदा नहीं हो पाता। तो इसके लिए आपसे मैं पहले से ही माजरत कर देती हूँ कि इसको थोड़ा सा बर्दाश्त कर लिया करें, मेरी मजबूरी समझे, अपने आप को नहीं कंट्रोल कर पाती, तो वो मैं आप लोगों को बस कहती हूँ, सारा इनको दे दूं मैं किसी तरह, इनको इनके अंदर उंडेल दूं, बस इनको समझा दूं मैं किसी तरह। और वो कई चीजें प्रैक्टिकल लाइफ से मुतालिक होती हैं, अब मैं उनके ऊपर आगे आगे चलती जाऊं तो फिर क्या फायदा ना, फिर आप उन पे प्रैक्टिस ही ना कर सके तो क्या उन आयतों का आपके लिए, तो बस यही होंगी, हाँ भाई ओहद के अंदर हुआ था, चलते चले जाओ आगे। ठीक है, तो ये उसके अंदर कुछ वजह होती है कि मैं कुछ आयतों को लेके ही बैठ जाती हूँ, तो इस पे ना आप दिल दिल ना बुरा किया करें। तो आगे हम चलते हैं। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा पहले इसकी बैकग्राउंड बता दूं जो हम अभी पढ़ने लगे हैं। आप देखें कि जब ओहद के उस पे आते हैं फिर दोबारा, और फिर उसको जरा अपने जहन में लेकर आए, कि जब जो मुशरिकीन थे वो लौटे तो रास्ते में सोचने लगे, ना तो हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कत्ल किया, ना मुसलमानों की औरतों को हमने पकड़ा, तो फिर हमने किया क्या है, ये किस किस्म की हमारी जीत है, तो चलो वापस। जब ये खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को फौरी हुक्म दिया कि बस तैयार हो जाए, निकलना है और काफिरों के पीछा करना है हमने। अब अंदाजा कीजिए, आप सिर्फ थोड़ी देर के लिए, मदीना की ना छोटी सी बस्ती थी, कोई बहुत बड़ी नहीं थी, कितनी थी मदीना की बस्ती, मैंने आपको पहले भी बताया होता, अगर आपने देखनी हो कि मदीना कितना बड़ा था, तो जितने आज मस्जिद नबवी है ना, उतना मदीना था पूरा का पूरा। ठीक है, अब ये जन्नतुल बकी जो आप देखते हैं, ये तो बाहर थी ना, कब्रिस्तान तो बाहर बनाया गया था, तो ये टोटल था ये, अब कितने घर होंगे इसके अंदर, और उनमें 70 शहीद हो गए, और वो एक दूसरे के रिश्तेदार ही तो हैं, किसी का कोई बाप है, किसी का कोई भाई है, किसी का कोई बहनोई है, किसी का कोई दामाद है, किसी का कोई कुछ है, हर एक की कोई रिश्तेदारियां थी, घर घर सफे मातम बिछी हुई थी, लोग गम में थे। फिर आपको मैंने बताया कुरान में आया, गम पे गम उन पे टूटा था, जो बच के भी आए हैं वो तो ठीक है, जिस्मानी तौर पे तो जख्म थे ही, दिल कैसे चूर चूर थे उनके, पर किस वजह से, ये जो सारा हुआ था ये वो उससे ट्रॉमेटाइज थे। अब खुद सोचें, एक एक बच्चा ये मसलन एक इम्तिहान देता है, इम्तिहान तो छोटी चीज है, जंग तो बहुत बड़ी बात है, एक इम्तिहान देता है, उसमें करते करते एंड में आके उसने कुछ गलती कर दी, उससे फेल हो गया,
बस एक नंबर सही रह गया वो, मतलब सिर्फ एक बात रह गई थी उसने अपनी उसमें किसी आके अपने जहन में उसके कोई बात ऐसी आई कि उसने उस सवाल को आता था उसको आता आता गलत कर दिया। अब उसके बाद उसका रिग्रेट आप सोचेंगे कितना होता है, उसके ऊपर कितना मलाल होता है कि हुआ क्या। अब इनको ये नहीं थी कि शिकस्त हुई थी, फतह मिलने के बाद और फतह देखने के बाद शिकस्त हो जाना और काफरों का ऐसे टूट पड़ना और फिर इतनी शहादतें हो जाना, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वफात की एक अफवाह उड़ गई थी कि वो शहीद हो गए, उसका जो सदमा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख भी लिया तो आपके दंदान मुबारक शहीद हो गए, आपके चेहरे के ऊपर जख्म आए हुए हैं, अपने साथी जख्मी हुए पड़े हैं, लाशों का मुसला हुआ पड़ा है, जो प्यारे थे अपने उनको देखना आसान है। आप एक बंदे की भी डेथ देखते हैं ना, कई दिन इंसान के जहन पे असर रहता है। और ये कहां मैदान है उहद में, मुसला हुए भी कहीं कान काटे हुए हैं, कहीं नाके काटी हुई है, कहीं कहीं तो हिंद ने तो हार बना लिया था, अल्लाह ताला माफ फरमाए, उसने हार बना लिया था इन आजा का और वो पहना था। तो ये आसान था कोई देखना, ये आसान था उनको दफन करना, ये एक जनाजा नहीं था, इतने जनाजे थे। तो ऐसे वक्त के अंदर आप सोचें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि चलो उठो अब चले, आप तो सिर्फ उस सिचुएशन को अपने जहन के अंदर लेकर आए, फिर ही आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो वक्त कितना मुश्किल होगा मुसलमानों के लिए। अब ये टाइम है कि आराम करें, कुछ थोड़ा रिलैक्स करें, थोड़ा अपने जहन को वापस ठिकाने लेकर आए, थोड़ा इस गम से तो निकले। एकदम अभी आए हैं, अभी 15 शव्वाल को ये हफ्ते के दिन ओहद की लड़ाई हुई थी, और 16th को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं चलो, एक दिन गुजरा है सिर्फ, अभी जख्म ताजा है, ये तो जख्म भरने में भी बड़ा अरसा लग जाता है किसी प्यारे के जाने का। तो अगले दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं, आप अंदाजा कीजिए कि वो दिल कैसे होंगे और वो हालात कैसे होंगे, उनको यहां डिस्क्राइब किया जा रहा है। लेकिन शान है उन लोगों की भी, सुभान अल्लाह, कि वो भी उठ खड़े हुए, चल पड़े, उनकी तारीफ अल्लाह ताला ने यहाँ पे की है। अल्लाह अकबर, अल्लाह ऐसा ईमान अता फरमा, ऐसा ईमान अता फरमा कि देखो कैसे शिकस्ता दिल है, कैसे हिम्मतें जवाब दी हुई है, जिस्मानी भी कमजोरी है जाहिर है, जख्म आए में है, हमें तो थकावट इतनी सी हो जाए ना, वो छोड़े आप कोई बड़ा काम तो छोड़े, हम किसी पिकनिक या दावत से ही आ जाए ना, आए ऐसे करके हम लेट जाते हैं, आए थक गए बड़े, वहां पे क्या किया हमने, क्या काम करके आए, कुछ भी नहीं, आए नमाज पढ़नी भी मुश्किल हो गई, मैं तो थक ही इतनी गई, गाड़ी में गए वहां एंजॉय किया, वापस आए तो तब भी हमारी थकावट ने देखे, सुबह फजर पे उठा नहीं जा रहा, थक बड़ा गए हैं, रात मजा जो करके आए हैं, गपशप जो करके आए हैं, हाँ तो हम तो मजे करके भी इतना थक जाते हैं कि हम नमाज ही छोड़ देते हैं। और वो देखो हम थोड़ा सा काम करके ना, और उसके बाद हमें कोई कह देना कि अब ये थोड़ा और है जो आप करते हैं, आए हम तो इतना थक गए, हम तो पहले ही एक टेस्ट दिया, अभी एक और टेस्ट आ गया, हम तो अभी असाइनमेंट करके बैठे हैं, अब ये भी टेस्ट देने शुरू हो जाए, हमारे तो ये हाल है। जरा सी भी हमें थकन हो जाए ना तो हम दूसरा काम करने को तैयार नहीं होते, चाहे वो अल्लाह के रास्ते का कोई काम हो, नहीं हमसे नहीं होता भाई, बड़े थक गए हम। और इमेजिन करें इन लोगों को, क्या उनको थकावट नहीं हुई होगी, आराम करके तो नहीं आए वो वहां से, दिल कैसे हैं। और जो ना गम होता है ना, वो वैसे इंसान को बड़ा थका देता, जो परेशानी होती है, जो गम होते हैं, इंसान फिजिकली कुछ भी ना करे, जो गम होता है वो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ता, इतना इंसान के ऊपर ऐसे उसके आसाब भी और उसको जिस्मानी तौर पे भी शल करके रख देता। इसीलिए ज्यादा गम तारी रखना 3 दिन से ऊपर क्यों मना किया गया, या इसके पीछे बड़ी हिकमत है, क्योंकि जब इंसान प्रोलॉन्ग टाइम के लिए उसी फेज में अगर रहता है ना, तो वो किसी काम के काबिल नहीं रहता, अल्लाह के काम क्या, वो तो अपने कामों के काबिल नहीं रहता, वो तो बीमार हो जाता है, बिस्तर में पड़ जाता है फिर। तो अल्लाह ताला ने उभारा कि निकलो इसमें से, 3 दिन के बाद कुछ नहीं है सोग, नॉर्मल लाइफ की तरफ आओ और कहो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हिकमतें हैं इसके पीछे, मगर इनको तो 3 दिन भी नहीं हुए थे। हम तो महीनों क्या साल हा साल ही करते रहते हैं, ईदे नहीं मनानी, अगले साल भी बरसियां करनी है, वो दिन दोबारा जब आएगा उसके ऊपर हमने गम मनाना है, तो वो महीने में हमने गम मनाना है, हमारे तो गम नहीं खत्म होते, तो काम क्या करेंगे? वी डोंट मूव ऑन विद लाइफ, हम वो जाने वालों के गम भी करते रहते हैं। तो ये इस्लाम के तरीके नहीं है। आप देखें अल्लाह ने उनकी तारीफ किस बात पे की है, सुभान अल्लाह, वाकई फिर वो तारीफ के काबिल थे। और हम फिर अपने आप को भी देखें कि हमारे ऊपर अल्लाह ना करे कोई कोई मुश्किल आती है, कोई गम आता है या कोई परेशानी आती है, या हम थक ही जाते हैं, चलो हमारे तो छोटी छोटी बातें ही हमारे लिए बड़े बड़े इम्तिहान बन जाती हैं, तो थोड़ा सा थक ही जाते हैं, तो फिर हमारे रवैये क्या होते हैं? अब देखें इनके लिए, अल्लदीन अस्तजाबू लिल्लाही वर रसूली, वो लोग जिन्होंने लबई कही अल्लाह के लिए और रसूल के लिए, रसूल ने कहा चलो अल्लाह का हुक्म आया निकलना है हमने, उन्होंने कहा लब्बैक, हम हाजिर हैं, हम पीछे हैं, उन्होंने कबूल किया। मिम बादी मा असाबहुमुल करहु, इसके बाद कि उनको तो अभी जख्म पहुंचा था, अभी अभी तो उनके ऊपर इतना बड़ा घाव लगा था, जो मैंने आपको सारी बातें बताई हैं। अब इसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, लिल्लदीन अहसनु मिनहुम वत्तकौ अजरुन अजीम, ये हैं वो लोग जिनके लिए, जिन्होंने नेकी की और तकवा की रविश इख्तियार की, बड़ा अजर है। कितनी बड़ी खुशखबरी फिर अल्लाह ताला ने दी। देखें मैं और आप ना, मैं आपको नहीं कहती सिर्फ, जब भी है मैं अपने आप को भी कहती हूँ, मैं कोई एग्जाम्प्टेड नहीं हूं, मैं और आप ना अजर बहुत बड़े बड़े चाहते हैं, बड़ा दिल करता है हमें ये अजर मिल जाए, हमें जन्नतुल फिरदौस मिल जाए, उससे कम पे तो हमें राजी नहीं, हमें बस ऐसे मिल जाए, ऐसे हो जाए, ये हो जाए। लेकिन जब आते एफर्ट करने की बात, जब आती है कुछ कुर्बानी देने की बात, जब आती है मेहनतें करने की बात, जब आती है अल्लाह ताला के हुक्म के ऊपर खड़े हो जाने की बात, तो फिर हमारा कोई हौसला ही नहीं पड़ता, फिर छोटी छोटी बातें ही हमें रोक लेती, फिर छोटी छोटी ख्वाहिशात ही हमारे पैरों की बेड़ियां बन जाती, फिर हम छोटे छोटे थकने पे ही हम बस पड़े रहते हैं और उठते नहीं, छोटे छोटे मसाइल ही होते हैं जो हमें इस तरह दिल शिकस्ता कर देते हैं कि हम कहते हैं हमसे नहीं होता, मैं तो आजकल इस डिप्रेशन में हूं। फिर देखिए हम किसी काम के काबिल ही नहीं रहते। तो ये नहीं, अल्लाह ताला को वो लोग पसंद है, अल्लाह ताला के यहाँ बड़े अजर है उन लोगों के लिए, या उनके ऊपर कोई मुसीबत आती भी है ना, तो उसके बाद फिर खड़े हो जाते हौसला करके, वो पाड़े ही नहीं जाते, वो फिर खड़े होते हैं, फिर उस रविश को पे चलने लगते हैं, नेकी की, एहसान की, बेस्ट एहसान हूं, सिर्फ नेकी नहीं एहसान हूं, एहसान के लेवल पे। और मेन होम ये नहीं है कि उनमें से, ये तबीजिया नहीं है कि वो सारे नहीं, उनमें से कुछ को अल्लाह ने देना, नहीं, ये बयानिया है, यानी ये वो लोग थे जिन्होंने नेकी इख्तियार की और तकवा की रविश इख्तियार की, उनके लिए बड़ा अजर है। आप इसकी मिसाल आप देखें, इससे आपको पता चलेगा कि उन किस हालात में निकले थे। ये वाकया आता है कि कबीला बनू अब्दुल अशल के एक सहाबी का बयान है कि ओहद में मैं और मेरा भाई दोनों शामिल थे और हम सख्त जख्मी हो चुके थे जब हम लौटे थे, तो जब अल्लाह के रसूल के मुनादी ने दुश्मन के पीछे जाने की निदा दी, उसने कॉल दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है निकलो सब, तो हम दोनों भाइयों ने आपस में कहा अफसोस है ना हमारे पास सवारी है कि हम उस पे सवार हो के अल्लाह के नबी के साथ जाएं, ना जख्मों के मारे हमारे जिस्म में इतनी जान है कि हम पैदल ही साथ हो जाएं, अफसोस है ये गजवा हमारे हाथ से निकल जाएगा, कैसे हो सकता है कि यानी हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ना जाएं, ये गजवा हमारे साथ से निकल जाए, अब सवारी भी नहीं और जिस्म में भी नहीं जान नहीं, हमारे बेशुमार गहरे जख्म हमें आज जाने से रोक देंगे, लेकिन फिर हमने हिम्मत बांधी। देखो जब इंसान हिम्मत करता है ना, तो अल्लाह भी उसका साथ देता है, फिर उसको खड़ा कर ही देता है। बात होती है एक दफा हमारा कदम बढ़ाने की, ठीक है, बात होती है एक दफा हमारा स्टेप लेने की, फिर देखो अल्लाह कैसे थामता है, फिर अल्लाह छोड़ता नहीं है। अब आप ना जिस कभी आप इसको आजमा के देखिएगा,
जब आपकी हिम्मत नहीं हो रही, आप कह रहे नहीं मेरे से नहीं होता, लेकिन आप कहते नहीं मैंने करना ही है, मैंने हिम्मत करनी है, और आप करने के लिए बैठ जाते हैं ना, वो काम जो भी है आप उस करने के लिए खड़े हो जाते, तो आप देखेंगे अल्लाह करवा भी देता, अल्लाह करवा देता, और आप फिर सोचते हैं कैसे हो गया। तो कहते हैं हमने हिम्मत बांधी, कहते मुझे मेरे भाई की नस्बत जरा हल्के जख्म थे, और मेरा भाई जो था वो बिल्कुल ज्यादा जख्मी था, तो जब मेरे भाई बिल्कुल चलने से आजिज आ जाता ना, मतलब जाहिर है चल के जा रहे हैं बेचारों के पास सवारियां भी नहीं, तो वो अब जख्मों से चूर हैं, जैसे जैसे गिरते पड़ते जा रहे हैं, वो कदम ना उसका उठता तो मैं जूं तू करके उसको उठा लेता, जब थक जाता तो मैं उसको उतार देता। हम वो कह सकते थे इतनी भी क्या मुसीबत है भाई, वो जो जाने वाले हैं जो ठीक है वो चले जाए, हमने लड़ना भी किया जाके, हमारे को हालात है लड़ने के, हम तो अपने आप को संभाल ले तो बड़ी बात है। लेकिन सुभान अल्लाह, मैं कहती हूँ वाकई अजरे अजीम पाने के वो काबिल थे, जब इंसान प्रूव करे तो अजरे अजीम पाता है। यू नेवर प्रूव, यू हैव टू प्रूव टू अल्लाह सुभान ताला कि अल्लाह मैं इस काबिल हूं कि तेरे से अजर पाऊं, करना कुछ नहीं है, बस सिर्फ बातें बातें बातें, किस बात की फिर हम अजरे अजीम की तवक्कोआत रखते हैं। जरा सा हमें काम ज्यादा करने को पड़ जाए फिर देखें हमारी जान की मुसीबत, कि सारा कोसने इस चीज को ही देते हैं, हम क्यों आ गए क्लास में, हमने क्यों ले लिया ये कोर्स, और छोड़ो जी हम सारे, हम क्यों उस मुसीबत में पड़ गए, सारी दुनिया ऐश कर रही है, देखो हम पता नहीं अपने आप पे ये क्यों लेके बैठ गए, मैं तो थक ही इतना जाती हूँ, मेरा तो ये हो जाता है, मेरे तो काम रह जाते हैं, मेरे तो फलाना हो जाता है, मेरे तो घर वाले बोलते हैं, मेरे तो मेरे से सुनी नहीं जाती बातें, अब मैंने नहीं करना, कितनी हमारी बातें, कुछ करने को तैयार नहीं है, बच्चों जरा सी हमारे पर आ जाए मुश्किल, जरा सी थकान कहाँ हमारे इन मिजाजों को कहाँ गवारा है, इतने हम सहल हैं और इतने हम आसानियां चाहने वाले लोग हैं, और फिर चाहते हैं अजरे अजीम भी मिले। आप देखें तो वो कहते हैं उनको उठा लेते थे, अब खुद भी जख्मी है भाई को उठाया, फिर खुद थक जाते थे फिर उसको रख देते, कहते हैं इस तरह जूं तू करके कैसे तैसे हम वो लश्करगाह तक पहुंच गए, अब मुसलमानों को जाके मिल गए। तो सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये थे वो लोग। और हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने हजरत उरवा बिन जुबैर जो उनके भांजे, उनसे कहने लगी कि ऐ भांजे तेरे दोनों बाप इन्हीं लोगों में से हैं जिनके बारे में ये आयत उतरी, यानी उनके बाप हजरत जुबैर अजरा मुबशरा में से हैं, जुबैर बिन अवाम और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला, वो भी बाप ही हुए ना, नाना जो है, ठीक है। तो और जबकि नबी अलैहिस्सलाम को खुद भी देखें कितने जख्म आए थे, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी निकले, तो अल्लाह ताला ने उनकी यहाँ पे रिवॉर्ड को मेंशन किया है और उनकी यहाँ पे हिम्मत की दाद दी है, उनकी तारीफ फरमाई है। तो कब कब ऐसा होता है कि ना मसाद हालात हों, हालात सूटेबल नहीं है, हिम्मतें जवाब दे चुकी हैं, कोई गम है कोई परेशानी है, फिर भी इंसान लब्बैक कहे, फिर भी इंसान अल्लाह के हुक्म को ना ना करे, ये है फिर उसके लिए रिवॉर्ड, ठीक है। तो ये समझ लें कि एक मुसलमान जब निकले हैं तो गए हमराउल असद तक, जो उनका लश्कर था अबू सुफियान का, अब वो सोच ही रहे हैं या कुछ वहां पे बैठे हैं उसके डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल खड़े हुए, तो हुआ ये कि उनके दिल में अल्लाह ताला ने ऐसा रोब डाल दिया, और ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजजा था जो अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाया था, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा रोब अल्लाह ताला ने महीने भर की मसाफत तक दुश्मन के दिल में डाल देता है। तो इतना उनके दिल में रोब आया ना मुसलमानों का, कि वो उन्होंने कहा कि नहीं जी हम तो चलते ही हैं, वापस चलते हैं हम, ये उन्होंने इरादा तर्क कर दिया। तो जब तक मुसलमान हमराउल असद पहुंचे तो वो जा चुके थे, तो ये गजवा हमराउल असद भी कहलाता है। बाज आप तफसीरों में ये देखेंगे कि लिखा हुआ है कि ये असल में बदरे सुगरा के बारे में है, यानी जो अबू सुफियान ने कहा था ना कि नेक्स्ट ईयर हम आके अब लड़ेंगे इसी जगह, तो वो नेक्स्ट ईयर फिर वो लोग आए और वो तो नहीं चले थे मुसलमान, जाके वहां पे पहले बैठ गए, और अब काफरों को जब इत्तला मिली तो वो भी चारों नाचार चल ही पड़े। तो उसको गजवा बद्रे सुगरा भी कहते हैं और गजवा सुवैक भी कहते हैं, यानी उसमें सत्तू थे, वो सत्तू लेके निकले थे, मगर एक जगह रास्ते में ही पड़ाव डाला, फिर वहीं से वापस चले गए थे। लेकिन ये ज्यादा सही नहीं लगता, क्योंकि बद्रे सुगरा जो था ना, फिर वो तो 1 साल गुजर चुका था। ये ज्यादा यही लगता है कि ये गजवा हमराउल असद के बारे में ही है कि जिसके अंदर के उसी वक्त फिर मुसलमानों को कहा गया और वो जख्मों के बावजूद निकले। ठीक है, और इस दौरान में ये भी हुआ था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बनु खुजा का सरदार माबद, वो वहां से गुजर रहे थे। अब ये बनु खुजा जो था ना, वो मुसलमानों का हलीफ कबीला था, मुसलमानों के बड़े हमदर्द थे ये, हालांकि काफिर ही थे लेकिन मुसलमानों के साथ बड़ी अच्छे ताल्लुकात रखते थे। तो वो जब उसको पता चला तो वो उसने बड़ा कहा कि हमें बड़ा रंज हुआ है, बड़ी हमें तकलीफ हुई कि आप लोगों के साथ ये हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा कि तुम जाके उनको उनको बताओ, जो काफिर हैं उनके अंदर ये बात बताओ कि मुसलमान इस तरह से आ रहे हैं, और उनको थोड़ा मुसलमानों से यानी एक तरह से खौफजदा करूं। तो जब वो इसी तरह गया माबद फजाई, तो उसने जाके फिर अबू सुफियान ने पड़ाव डाला हुआ था, तो उसने जाके कहा, आगे आगे वो पहुंच गया, उसने जाके अबू सुफियान ने पूछा कि भाई क्या हालात हैं, क्या खबरें हैं। अब उस जमाने में तो खबरें इसी तरह लोगों से ली जाती थी ना, कोई काफला गुजर रहा है, कोई कोई, वो अभी वो मशवरे कर ही रहे थे कि हमने करना क्या है, जो काफिर थे। तो जब ये माबद खजाई वहां पहुंचा, तो अबू सुफियान ने इसे पूछा, तो उसने कहा कि वो तो बड़ी जमात लेके तुम्हारे ताकुब में आ रहे हैं, और वो लोग बड़े गुस्से में हैं, जो पहले लड़ाई में शरीक नहीं हुए थे वो भी शामिल हो गए, और सब के तेवर बदले में हैं, और वो भरपूर ताकत के साथ हमला आवर होने लगे, मैंने तो ऐसा लश्कर कभी नहीं देखा। ये सुन के अबू सुफियान के तो हाथों में तोते उड़ गए, वो कहने लगा अच्छा ही हुआ तुम मेरे मुझे मिल गए, और वरना हम तो खुद इनकी तरफ जाने के लिए तैयार बैठे थे। उसने कहा हरगिज ना ये इरादा करना, मेरी बात का क्या है, अभी बल्कि तुम्हें थोड़े तुम यहां से निकलने से पहले ही तुम उनके घोड़ों को देख लोगे, और खैर इसी में है कि तुम यहां से निकलो, क्योंकि उनके लश्कर बहुत गुस्से के साथ और बड़ी तैयारी के साथ आ रहे हैं, बड़े अजम के साथ आ रहे हैं, जान बचाओ अपनी, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं जिससे मैं बता सकूं तुम्हें कि मुसलमान का हाल क्या है। वो तो उन्होंने कहा कि अच्छा, उनके तो बड़े छक्के छूट गए, उन्होंने कहा कि अब यहां से निकलो, तो वो फौरन मक्के की राह ली उन्होंने, और जाते जाते उसने क्या किया अबू सुफियान ने, कि एक काफला गुजर रहा था, कबीला अब्दुल कैस के आदमी थे, वो मदीना जा रहे थे कारोबार के घर से, उनसे अबू सुफियान ने कहा कि तुम मुसलमानों के लश्कर को पाओगे तो वहां पे एक खबर पहुंचा देना कि हमने तो उनको खत्म करने के लिए ना लश्कर जमा कर लिया, और हम बस आ रहे हैं, अगर तुमने ये पैगाम पहुंचा दिया तो जो हमारा सूख लगता है ना, वो उनके बाजार लगते होते थे उकाज का, उसमें मैं तुम्हें बहुत सारी किशमिश दूंगा, तुम लोग ये मेरा काम करो। तो उन लोगों ने क्या किया, अब यहां से भी ये आदमी चल पड़ा, ये जो मैंने कहा कबीला अब्दुल कैस के जो आदमी थे, उन लोगों ने जाके मुसलमानों को नमक मिर्च लगा के और बड़ी ये बात बताई कि देखो अबू सुफियान तो आ रहा है, और वो तो ऐसे, और वो तो बस चल पड़ा है वहां से, और वो तो ऐसे लश्कर ला रहा है, और ऐसे बिल्कुल उसी तरह जैसे कि अभी मैंने आपको बताया माबद खजाई ने इनको आके कही थी। तो ऐसे में अब मुसलमानों का क्या हाल होता है, आप क्या सोचते होंगे क्या हाल हुआ होगा, हमारे जैसे कोई हो तो डर के मारे ही कहेंगे बस देखो क्या हमारे साथ हो गया है, हम तो आ ही क्यों गए। लेकिन वहां पे उनका हाल देखें, हर हर सिचुएशन में ना अपने आप को रखा करें जरूर, इसीलिए मैं आपको इतनी डिटेल बताती हूँ कि उस सिचुएशन को आप ऐसे महसूस कर सकें जैसे आपके सामने हो रही है, जैसे आप वहां हैं। और उसमें सोचा करें, अगर मैं वहां पे होती तो मैं क्या करती, क्या करती मैं उस वक्त। क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में यहाँ पे भी आज सिचुएशंस आएंगी जिसमें हमारे भी इम्तिहान होते हैं, इन्हीं जगहों से तो हम सीखते हैं कि हम क्या करते, साहबा ने क्या किया, और मैं होती तो मैं कहाँ खड़ी होती। अल्लदीन काला लहुमुन नासु, वो लोग के कहा उनसे लोगों ने, कौन से लोगों ने, यही वाले जो कबीला अब्दुल कैस के जो लोग थे, उन्होंने कहा इन नास कद जमाउ लकुम, लोग तो तुम्हारे लिए भाई जमा हो रहे हैं। लोग कौन, मतलब वो जो काफिर हैं, वो तुम्हारे लिए जमा होके आ रहे हैं। फख्शाउहुम, बस डरो उनसे, ओ भाई तो वो तो तुम्हारे बड़ा खराब भी कर देंगे, वो तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। आज ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, वो पत्थर के जमाने में पहुंचा देंगे भाई, ओ भाई वो तो आप लोगों की नंबर प्लेट नोट कर लेंगे, वो जी फोन रिकॉर्ड हो रहे हैं, वो जी FBI आ जाएगी, वो जी ऐसे हो जाएगा, वो जी एयरपोर्टों पे रोक लेंगे, वो देखो भाई आपके पास पता नहीं क्या हो जाएगा आपके ऊपर, वो ना 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 ये ना काम करना, तो मगर क्लासें लोगे ना इनमें तो पता नहीं क्या हो जाना है, मस्जिद जाओगे ना तो पता नहीं क्या होगा, हिजाब ले लोगे ना नजरों में आ जाओगे, देखना फिर वो ये ना हो कि तुम्हारे ऊपर कोई हमला ही कर दे, तुम्हारे हिजाब दे के देखो ना, ना ना ये नाम ना रखना, मोहम्मद नाम ना रखो आजकल, ये उसका वक्त नहीं है, पहचान लीजिएगा, कोई ऐसा सा नाम रखो ना, कोई सैमी रख लो, कोई डैनी रख लो, कुछ ऐसा रखो पता भी ना चले, देखो ना इस तरह के नाम रखोगे तो नजरों में आ जाओगे, क्या करते हो आजकल, कोई वक्त है, ये हिजाब लेने की क्या जरूरत है, अपने आप को खतरे में क्यों डाल, छोड़ो हिजाब को, और ये कुरान पढ़ोगे पता है तुम नजरों में कितने आ जाओगे। नोट कर रहे हैं वो, सब कुछ नोट कर रहे हैं भाई, वो ना हो गए को खुदा हो गए, अस्तग़फिरुल्लाह, उनको खुदा ही बना लिया, हमारी नकलो हरकत नोट हो रही है भाई, उनको भी ऐसे ही कहा था। और है वो अबू सुफियान का लश्कर, और ये इनकी हालतें सोचेंगे किस हालत के अंदर है ये, उसके आगे वो क्या कहते हैं, अल्लाह अकबर फजादहुम ईमाना, अल्लाह हमारे भी ईमान ज्यादा हो जाए करे, उनका तो ईमान ही बढ़ गया, सुभान अल्लाह। वो आए कहने के लिए, वो कोई खुशखबरियां नहीं सुना रहे, कह रहे डर जाओ, और इनके ईमान बढ़ रहे, ये कैसे लोग हैं, और वो मुंह से क्या कहते हैं, हाय ये कहते हैं हाय अगर ना आते तो अच्छा ना होता, हाय अगर हम रह ही जाते, हाय हमारे पास तो छबला बहाना था, हम तो वैसे ही जख्मी थे, हमें क्या मुसीबत पड़ी हुई थी, हम क्यों चल पड़े, वो छोड़ो जी ये सब, कोई जरूरत नहीं ऐसे इस्लाम की हमें, वो क्या कहते हैं हसबुनल्लाहु व नियमल वकील, हमारे लिए अल्लाह काफी है, और वो कितना अच्छा कारसाज है, वो हमें किससे डरना, वो कंसंट्रेशन कैंप्स बना रहे हैं, वो जी अब आपकी रजिस्ट्रेशन शुरू होने लगी है, वो जी अब ऐसे होने लगा है, नहीं हसबुनल्लाहु व नियमल वकील, अल्लाह अकबर, ये थे वो कलिमात जो के सहाबा ने उस वक्त अपने मुंह से अदा फरमाए, हसबुनल्लाहु व नियमल वकील, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान से अदा फरमाए, वो ये वो कलिमा है को जो उनका ईमान बताता है कि उनका ईमान कितना था कि वो आगे से घबराए नहीं, फरमाया हसबुनल्लाह व नियमल वकील। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब किसी चीज से खौफ करके ये कोई कलमा कहे तो अल्लाह ताला उस खौफ से उसको निजात दे देता है, कि हम कहें कि पता नहीं इलेक्शन होने, कौन सी हुकूमत आनी है, पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाए, नहीं हसबुनल्लाह व नियमल वकील, हमारे लिए अल्लाह काफी है। और कारसाज कौन होता है, वकील कौन होता है, काम बनाने वाला, तो नियमल वकील बेहतरीन काम बनाने वाला, यानी हमारे एक तो ये ना इस सिचुएशन में तो आपने समझ लिया ना बात को, अब सोचे हमारे कोई काम है, कोई बिगड़ रहा है काम, कोई काम ऐसा है जो हमसे नहीं हो पा रहा कि हम इसको किस तरह से हैंडल करें, कोई बच्चे का रिश्ता नहीं हो रहा, किसी की नौकरी का कोई मसला हो रहा है, किसी घर की कोई परेशानी हो रही है,
कोई ऐसे औलाद के कोई मसाइल हैं कोई जो नहीं हैंडल हो पा रहे, तो हसबुनल्लाह व नेमल वकील, काम बनाने वाला तो अल्लाह है, और वो बेहतरीन काम बनाने वाला मेरे से नहीं होता, अल्लाह मेरे लिए काफी है ना, वो करेगा, वो नेमल वकील है। और यही वो कलिमा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला जाने लगा, जो आखिरी कलमा उनकी जुबान से निकला आग में पड़ते वक्त, वो था यही हसबी अल्लाह व नेमल वकील। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम पे कोई बहुत बड़ा काम आ पड़े ना तो ये पढ़ा करो, बड़ा काम आ जाए, कोई बड़ी मुश्किल आ जाए, कोई ऐसी परेशानी आ जाए। इसी तरह एक हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं किस तरह बेफिक्र हो जाऊं, हम तो बड़ी बेफिक्री की जिंदगी गुजारते ना, फिक्र है कोई नहीं, मजे करो, शॉपिंग करो, खेल कूद करो, सैरों करो, गपशप करो, मजा करो, जिंदगी फन है, मुझे इस तरह तो नहीं हम जिंदगी गुजार सकते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे, मैं बेफिक्र कैसे हो जाऊं, मैं कैसे फारिग होके आराम से बैठ जाऊं, हम तो आराम से ही नहीं उठते, हमारे आराम खत्म ही नहीं होते, अगर 1 घंटे का काम करते हैं तो 4 घंटे का आराम करते हैं, फिर वो फरमा रहे मैं आराम कैसे करूं, क्यों क्या वजह है, क्यों नहीं आराम कर सकते, क्यों नहीं बेफिक्र हो सकते। फरमाया जो सूर फूंकने वाला है उसने सूर मुंह में ले रखा है, अल्लाह हू अकबर, कभी अल्लाह मैं कहती हूँ हमारे अंदर ये क्यों नहीं फिक्र है। हाँ ये फिक्रें जरूर है, अब नौकरी का क्या बनेगा, बच्चों के फ्यूचर का क्या बनेगा, ये कहाँ से खाएंगे, इनके रिश्तों का क्या बनेगा, इनके घरों के हालात सही रहे उसका क्या बनेगा, ये कैसे गुजारा करेंगे, हमारा इस मुल्क में क्या बनेगा, ये जरूर फिक्र है, मगर ये फिक्र कि सूर फूंकने वाले ने सूर को मुंह में लिया हुआ है और पेशानी झुकाए हुए है और अल्लाह के हुक्म का मुंतजर है कि कब अल्लाह ताला हुक्म दे दे, और वो सूर में फूंक दे, ना वो सोता है, ना वो खाता है, ना वो पीता है, ना वो ऊंघता है, ना कुछ नहीं, वो अलर्ट है और उसने अपने कान लगाए हुए अल्लाह के हुक्म पे, वो भी रिलैक्स होके बैठ जाए, अभी कौन सी, अभी थोड़ी होना है, अभी तो बड़ा टाइम पड़ा, वो कितना अलर्ट है कि एक लम्हे की भी कहीं ताखीर ना हो, जूं ही हुक्म आए मैं सूर फूंक दूं, तो फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं और खैरुल बशर है, सैयदुल अंबिया है, और क्या फरमा रहे, मैं बेफिक्र कैसे हो जाऊं, मैं कैसे आराम करने बैठ जाऊं जबकि सूर फूंकने वाले ने सूर पकड़ा हुआ ऐसे अपनी पेशानी झुकाए हुए है, अल्लाह के हुक्म का मुंतजर है कि कब हुक्म और वो सूर फूंक दे। साहबा बड़े परेशान हो गए ना, फिर उन्होंने पूछा या रसूल अल्लाह फिर हम क्या पढ़ा करें, हम क्या पढ़ें, फिर हम क्या कहा करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यही फरमाया कि कहा करो हसबुनल्लाह व निअमल वकील व अलल्लाहि तवक्कलना, हमारे लिए अल्लाह काफी, वो बेहतरीन काम बनाने वाला, उस पे हमने भरोसा किया, सुभान अल्लाह। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से भी हजरत जैनब ने बाद में पूछा था उनके ऊपर, जब तो जो तोहमत लगी थी कि जब तुम हजरत सुफान बिन मौतल की सवारी पे सवार होने लगी थी तो तुमने कुछ बोला था, कुछ कहा था, तो फरमाती हाँ मैंने कहा था हसबी अल्लाह व निमल वकील। देख लें फिर अल्लाह ताला ने भी कैसी उनकी बरात उतारी कुरान में, ये पाक है हाँ? ये कलमा बहुत बड़ा कलमा है, मामूली बात नहीं है ये, तो आपको ना कुछ भी ना याद आए, कोई कोई ऐसे अब डरा रहा है, या कोई ऐसे हिम्मत कम करा रहा है, खौफजदा कर रहा है, या आपके ऊपर कोई मुश्किल मौका आ गया है, जैसे आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कितनी मुश्किल चीज आ गई थी, कितनी मुश्किल बात थी, आयशा रज़ियल्लाहु ताला के लिए कितनी परेशानी की बात थी, तो उस वक्त क्या चीज है जो हमें हमने याद रखनी है। एक मैंने आपको पहले बताया था ना कि ये चीजें नहीं बोलनी, अगर ऐसे होता तो ऐसे होता, ऐसे होता तो ऐसे, लेकिन उस वक्त परेशानी की बात हो क्या कहना, हसबुनल्लाहु व निमल वकील। ठीक है, तो मुसलमानों के तो ईमान बढ़ गया, इससे क्या पता चलता है, ईमान जो होता है वो बढ़ता भी है घटता भी है, इससे ये पता चला ना, ईमान बढ़ता ही होगा, तो यहाँ पे कहा गया उनका ईमान और बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, क्योंकि उनको पता है कि ये अल्लाह के वादे हैं,
और ये अल्लाह ताला का वादा सच्चा होगा। क्या आजमाइशें आएंगी? इसी तरह सूरह अहज़ाब में भी है ना कि वो जब पता चला इतना बड़ा लश्कर 10,000 का लेकर आ रहे हैं काफिर, अब इतनी छोटी सी मदीना की बस्ती है, ये सारे ही मिल के आ रहे हैं, क्या बनेगा? तो मुनाफिक तो वो उन्होंने तो वो हशर मचाया, लो जी ये इनकी बातें देख लो सुन लो, बड़े बड़ी बातें करते थे, हम वहां तक पहुंच जाएंगे, हम ये कर लेंगे। आज देखो खौफ का आलम ये था, बाथरूम तक जाना मुश्किल था, इतना खौफ था। तो कहते आज ये हालत हो गई है, बाथरूम तक जाना मुश्किल है, ये कहाँ की बातें कर रहे थे। उस वक्त भी आता है कि मुसलमानों ने उनके ईमान और बढ़ गए थे, उन्होंने कहा इसके तो वादे अल्लाह ने हमसे किए हैं कि आएंगे मुश्किल हालात भी, तो क्या हमने नहीं पढ़ लिया कि तुम्हें ऐसे ही जन्नत मिल जानी, अल्लाह ने अभी देखना नहीं तुम्हें सबर करने वाले कौन है, क्या तुमने ऐसे ही देख लिया कि तुम ऐसे समझ लिया तुम जन्नत में चले जाओगे, अल्लाह ने अभी देखना नहीं है तुम में से मेहनत मुशक्कत अल्लाह के रास्ते में अपने आप को खपा देने वाले जिहाद करने वाले कौन है, तुमने ऐसे ही समझ लिया तुम जन्नत में चले जाओगे, अभी तो अल्लाह ने देखा ही नहीं है, वो जैसे हालात तुमसे पिछले पे गुजरे वैसे हालात तुम्हारे पर आए ही नहीं अभी, तुमने ऐसे ही समझ लिया। तो अब इसका मतलब है कि तुम्हारे ऊपर भी आएंगे हालात, तुम्हें भी आजमाया जाएगा, अल्लाह ने टेस्ट करना है। तो जब टेस्ट आता है तो उस वक्त अगर मगर ये ना होता वो ना होता, ऐसे ना चलता वैसे ना, उस वक्त तो कहना चाहिए कि हाँ इसका तो वादा अल्लाह ने किया हुआ है, ये कोई अनोखी चीज तो नहीं, जब ईमान लेकर आए हैं तो ये तो इम्तिहान आना ही है, शुड बी रेडी फॉर दिस, तुम्हें ऐसी बातों से ही जन्नत में भेज दिया जाएगा। अब बातें बनाते रहो जितनी मर्जी करा लो बातें, उसका क्या है? जन्नत के हमें शौक है ईमान के लिए, दीन इस्लाम के लिए, अल्लाह रसूल के लिए, हम तो जान देने को तैयार हैं, हम तो ऐसे कर देंगे, हम तो वो कर देंगे, वो ये बातें तो मुनाफिकीन भी बड़ी करते थे, फिर उसके बाद देख लो कि क्या निकला। और आगे बात आएगी अल्लाह ताला ने फिर अलग अलग करके छोड़ना। तो ये हसबुन अल्लाह व निअमल वकील, ये बहुत बड़ा कलमा है, बहुत बड़ा, देखो कितने बड़े बड़े लोगों ने कहा है, तो हम इसको छोटी बात ना समझे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने कहा है, और ईमान को हमने बढ़ाने के लिए कोशिशें करनी होती हैं, ईमान बढ़ता है। आप खुद नोट कर लेते होंगे कुरान पाक में भी है कि वो लोग जब कुरान सुनते हैं अनफाल में तो उनके ईमान बढ़ जाता है। ईमान बढ़ने का इसका मतलब कुरान के जरिए ईमान बढ़ता है, अगर आप कुरान से दूर हो जाते हैं ना, आप मसलन चले जाएं वेकेशन पे, जरा महीना आप रह के आते हैं घूम फिर के आते हैं, उसके बाद मुझे अपने ईमान का हाल बताएं क्या होता है, वहां पे आपने ना कोई क्लास ली ना कोई कोई आपने अल्लाह की बात सुनी ना कुछ, है क्या होता है, खुद आप सब बता सकते हैं इस बात को। आप अपने मुल्कों में घूमने फिरने जाते हैं, अच्छा आप घूमने फिरने छोड़ें, आप बाजार ही ज्यादा जाना शुरू हो जाए, छोड़ दे इसके लिए हमारा टाइम नहीं है, आजकल शादी है घर के अंदर, बाजार जाना है, बाजार के चक्कर लगते जा रहे हैं, ईमान का लेवल थोड़े दिन में ही देखना क्या हो जाता है। आप इतने से अंदाजा लगा दे कि जुमे के दिन आपके ईमान का लेवल जब आप क्लास लेते हैं तो क्या होता है और अगले थर्सडे तक क्या हो जाता है, सोचिए ना। तो ये ईमान समझ लें ऐसे जैसे पौधा है, इसको मुसलसल पानी देना पड़ता है, सींचना पड़ता है, तो ये ग्रो करता है, इसको आप छोड़ नहीं सकते कि आप बस छोड़े रखे ईमान है तो पता नहीं खुद ही बढ़ता जाना है, खुद नहीं बढ़ेगा ये, आपको कोशिश करनी पड़ेगी। हमने छोड़े रहते हैं, वो मुरझाया पड़ा है हमारा ईमान, को परवाह ही नहीं है। और ये जो हम कहते हैं ना अरे वो नमाज नहीं पढ़ता फलाना ये नहीं करता मैं क्या करूं इतनी दफा कह दिया फलाना बात नहीं सुनता, वो ये बात नहीं है कि वो नमाज की तरफ क्यों नहीं आ रहा है, पीछे वजह पता है क्या, ईमान कमजोर हो चुके, ईमान का पौधा मुरझाया पड़ा है, वो जब ताजा होगा ना तो फिर देखना वो खुद ही इस तरफ आएंगे। तो प्रॉब्लम ईमान में होती है तभी अमल में सुस्ती आती है, जिस दिन ईमान स्ट्रांग हो और आप देखें फिर आप किस तरह फुर्ती से काम करते, फिर परवाह नहीं होती थकावटों की, फिर परवाह नहीं होगी कि कितने घंटे से मैं बैठी हुई हूं ये काम कर रही, और जैसे जैसे ईमान कम होता जाएगा, इसका मतलब सबका ईमान एक लेवल का भी नहीं होता, हर एक ईमान मुख्तलिफ होते। अब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला का ईमान कैसा था, उन्हीं में सहाबा कराम थे दूसरे थे जिनका ईमान उनसे कम था, और हमारे ईमान तो क्या हालात है, और फिर भी हम कहते हैं हो बहुत ज्यादा हो गया बहुत हमने पढ़ लिया, बहुत तुम्हारे लिए ज्यादा ये है। नहीं, हमें तो बहुत ज्यादा रिमाइंडर्स की जरूरत है। हमारे तो ईमान के पौधे बहुत अरसे से खुश्क थे, इनको बहुत सींचने की जरूरत है, बहुत केयर की जरूरत है। और फिर जो फितने हैं, जो हवाएं बाहर चल रही हैं ना, वो तो इस पौधे को उखाड़ के फेंक देना चाहती हैं। वो आंधियां हैं आज के दौर में, वो तूफान है आज के दौर में, जो आपकी इस पौधे को नहीं चाहते कि ये जड़ें पकड़े, वो चाहते उखेड़ के फेंके। तब कितनी मेहनत करनी होगी इसको बचाने के लिए, तब कितनी कोशिश करनी चाहिए हमें कि हमारा ईमान मजबूत हो, ज्यादा हो, ज्यादा हो। फिर अल्लाह वालों की सोबतें, नेक लोगों की सोबतें भी ईमान को बढ़ाती हैं। तो नेक लोग कौन होते हैं? नेक लोग वो होते हैं जिनको देख के अल्लाह याद आ जाए, जिनके पास बैठ के आपको नेकी का शौक हो, गुनाहों से दिल उचाट हो, अल्लाह की याद आए, आखरत याद आए। उनकी सोबतें भी इंसान का ईमान बढ़ाती हैं। नेक माहौल, अच्छा माहौल, अच्छे दोस्त, सालेहीन की कंपनी, तो ये कुछ चीजें जो ईमान को बढ़ाने वाली हैं। इसको हमेशा हमने कोशिश करनी है हमारा ईमान बढ़े, और हमेशा ये सोच रखनी है कौन सी काम करूं कि मेरा ईमान बढ़ जाए। ईमान घटता बढ़ता है ना, कौन सा काम करूं कि ईमान बढ़े मेरा? ऐसे लेक्चर सुने, ऐसी बातें किसी की सुने, ऐसी किताबें पढ़ें कि ईमान बढ़े, ऐसे काम करें इबादत में बढ़े आगे, उससे और ईमान बढ़ेगा, इबादत और बढ़ेगी, फिर ईमान और बढ़ेगा, फिर इबादत और, तो दोनों एक दूसरे के साथ है। तो हसबुन अल्लाह व नेमल वकील का पल्ले बांध लिया ना आपने, भूलना नहीं है, ठीक है? एक दूसरे को भी वतवासव बिल हक वतवासव भी सब्र भी करते रहना है, एक दूसरे को भी बताते रहना, दूसरा भूल जाएगा, आपको याद आ जाए ना, आप बता दिया करें।